सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मैंने आपको उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं और दोनों के लिए रणनीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन इत्यादि बताया था। अब मैं आपको मूल्यांकन योजना के बारे में बताती हूँ कि ये मूल्यांकन योजना यदि बनाई जाती है तो इसका प्रारूप किस प्रकार से है। सबसे पहले हम देखते हैं परियोजना या प्रोजेक्ट, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं, किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संपादित किए जाने वाली गतिविधि या क्रियाकलाप को प्रोजेक्ट या परियोजना कहते हैं। इन परियोजनाओं से श्रम करने, संग्रह करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने, व्याख्या करने जैसी शक्तियों को उभारा और मापा जा सकता है। परियोजना निर्माण विद्यालय के आसपास के क्षेत्र से संबंधित रखनी होगी। परियोजना से बच्चों का परस्पर सहयोग, अनुभव बांटने तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने में हम सक्रिय रह सकते हैं। दूसरा आपका आता है असाइनमेंट या प्रदत्त कार्य। आपको भी असाइनमेंट खूब दिया गया है बीएड में, जो कि आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता था, कर भी रहे होंगे आप इस समय। तो चलिए देखते हैं कि ये असाइनमेंट है क्या। ये जो कार्य है ये पाठ्य पुस्तक आधारित ना हो करके बाहरी परिवेश या बाहर के प्रसंगों पर आधारित होता है। इससे बच्चों की रचनात्मकता पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त क्षेत्र में भी विकसित होती है और वो बृहत ज्ञान को प्राप्त करते हैं। असाइनमेंट या गृह कार्य कह सकते हैं आप इसको, एक तरह से जो आपको कार्य प्रदत्त किया जाता है, दिया जाता है, उसमें आपको विविध जानकारियाँ मिलती हैं, विविध ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा देखते हैं छात्र प्रोफाइल, बच्चे द्वारा किए गए कार्यों का विवरण रखना। बच्चे को अपना छात्र प्रोफाइल बनाने के लिए उत्साहित किया जाए, इससे बच्चा स्वयं की प्रगति से अवगत रहता है और शिक्षक, अभिभावक या पर्यवेक्षक से मदद मांग रखता है। शिक्षक और पर्यवेक्षक भी उसके पोर्टफोलियो से फीडबैक लेकर आगामी कार्य करा सकते हैं। अगला देखिए अवलोकन, बच्चे को कार्य करते समय देखें कि उसकी रुचि, गति और अधिगम की प्राप्ति का स्तर क्या है। एक बार के अवलोकन से निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, मौखिक और लिखित दोनों ही प्रकार के कार्यों का अवलोकन करके तब निर्णय पर पहुंचे हैं। उसके बाद आपका आता है भ्रमण या विजिट। भ्रमण की आख्या के आधार पर मूल्यांकन करें। मानचित्रण, मानचित्रण के आधार पर मूल्यांकन। व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतिकरण या अभिव्यक्ति, इनके आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं आप। अगला है नवा नंबर आपका सूचीकरण और वर्गीकरण। उसके बाद 10वां नंबर आपका है संग्रह या संकलन। 11वां चित्रों पर चर्चा। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, इसके द्वारा हम किस तरह के कार्य को आगे बढ़ाएं। इसमें एक अध्यापक को क्या भूमिका निभानी चाहिए, जैसे यह जो है विद्यार्थियों के आकलन पर अध्यापक की सकारात्मक भूमिका रहती है, तो जो अध्यापक की भूमिका है उसमें किन-किन बिंदुओं को हम अध्यापक होने के नाते देखें। पहला नंबर ये देखिए, पर सबसे पहले कि ये प्रक्रिया अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को सुधारने में सहायक होती है। दूसरी बात, बार बार परीक्षण और परीक्षाएं लेना आवश्यक होता है, यह छात्र एवं शिक्षक दोनों को सक्रिय बनाए रखता है। तीसरी बात, आकलन के लिए विविध उपकरण और तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, अतः अध्यापक को तकनीकियों का पूर्ण ज्ञान रहता है। चौथे नंबर पे देखिए, कक्षा का जो मित्रवत वातावरण है उसका जो आकलन होता है एकदम स्नेहपूर्ण वातावरण बन जाता है, तो ये भय को कम कर देता है। समूह में क्रियाएं करने और साथी का आकलन करने से एक मैत्रीपूर्ण और सुंदर वातावरण बना रहता है। अगला देखिए, विद्यार्थियों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें भय से दूर करना चाहिए उस समय। फिर अगला नंबर, गलत उत्तरों का प्रयोग बच्चे की समझ के स्तर का विश्लेषण करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जो क्रमशः सही प्रत्यय के निर्माण में सहायक हो सकता है। अगला देखिए, केवल अंतिम परिणाम से बालक की क्षमता का विकास निर्णय करना एक अच्छा विचार नहीं है, वरन निर्णय प्रक्रिया उन्मुख होना चाहिए। अगला, आकलन कसौटी का अधिगमकर्ता और अभिभावकों से साझा करना। इस प्रकार का उपागम विद्यार्थियों को अपने आवंटित कार्य में सुधार को प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला, विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्रेरित करने और उनकी उत्तम साझेदारी के लिए आकलन परिणाम उपयुक्त विधि से बनाए जाए। अगला, विद्यार्थियों की को परंपरागत नाम जैसे स्लो लर्नर, पुअर परफॉर्मेंस या इंटेलिजेंट चाइल्ड आदि की उपेक्षा की जानी चाहिए और दुराग्रह उनके अंदर नहीं आना चाहिए। इसके बजाय उनमें सकारात्मक और सुझावात्मक टिप्पणी ही की जानी चाहिए। ऐसे कार्यों के निर्माण करना चाहिए जिससे प्रत्ययों के निर्माण को सुविधा प्रदान की जा सके। अगला देखिए, एक विशेष कक्षा के अध्यापन में अध्यापकों के मध्य समन्वय उनमें निरंतर मीटिंग के से उत्तम हो सकता है। छात्र जो है अध्यापकों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, आप जानते ही हैं, इसलिए अध्यापकों को इस कार्य हेतु समय निकालकर मूल्यांकन प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए और जिस प्रकार की बाधाएं उसमें आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करके उनमें नई नई आदतें, अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए और ये सब। अगली कक्षा के लिए बी सेफ, स्टे होम, अपना ध्यान रखें।